Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Brahma Satyam Jagan Mithya Jeevo Brahmaiva Napara. ये तो वेदांत का सिद्धांत है। एक ही श्लोक में सब कुछ कह दिया। माने ये जीव क्या है? का ब्रह्म ही है, लेकिन इसको हम लोग मानने को तैयार नहीं। ये बात हम लोगों के गले उतरती नहीं। का हम ब्रह्म कैसे हो सकते? हम तो मरने वाले हैं, जन्मने वाले हैं, अल्पज्ञ हैं, हम ब्रह्म कैसे हो सकते? लेकिन जैसे उस बॉक्स के अंतर्गत क्या था? सोना का ही बॉक्स था, केवल उसे नाम दिया गया था और रूप दिया गया था। तो नाम रूप तो वस्तु किसकी है? का संसार की। नाम और रूप क्या है? ये संसार। और जो सत और चित आनंद है वो क्या है? वो ये सोना। वही क्या है? वही। उस सोने से पृथक वहां कोई वस्तु है नहीं, लेकिन नाम रूप को लेकर के वो भिन्न ही प्रतीत, सोने से सर्वथा भिन्न पृथक प्रतीत होती। तो इसको जब जानना होगा तो क्या करना होगा? जैसे उस वृद्धोपदेश से और उसके आज्ञा का पालन करते हुए और वो छेनी हथौड़ा लेकर के और उसका प्रयोग किया तो उस सोने की प्राप्ति हो गई। सोना प्राप्त नहीं था, प्राप्त था लेकिन प्राप्त होते हुए भी उसका हमें ज्ञान नहीं था। और फिर जो है वो प्राप्त हो गया। कब प्राप्त हुआ? कहने लगी जैसे ही छेनी रख करके हथौड़े की चोट लगाई। तो ये हथौड़ा क्या है? ये छेनी क्या है? ये हथौड़ा और छेनी जो है हमारी बुद्धि ही हथौड़ा है। बुद्धि क्या है? हथौड़ा है। और छेनी क्या है? तो बुद्धि कैसी बुद्धि? तो विवेकपूर्ण बुद्धि। जो विवेक से युक्त बुद्धि है वो बुद्धि है क्या? हथौड़ा। और विवेक वाली बुद्धि क्या है? तो कार्य और कारण का विवेक रखने वाली जो बुद्धि है उस बुद्धि का नाम है क्या? हथौड़ा। विवेक अर्थात आप श्रुतियों में सुनते हो दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी। और वहीं कहा है तत्प्रवाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। वाणी भी वहां से वापस लौट आती है, वो भी बिचारा लौटता रहा, नहीं प्राप्त कर पाया। और फिर कहने लगे नहीं नहीं, कहा उसी बुद्धि से, और वो प्राप्त भी हो जाता है। लेकिन बुद्धि कैसी? हथौड़ा रूप। हथौड़ा रूप मतलब जो कारण पर चोट करे। तो वहां क्या कहा? दृश्यते त्वग्रया बुद्धया अग्र बुद्धि। बुद्धि जो है कार्य का विश्लेषण करे और कार्य का विश्लेषण करते हुए कारण की तरफ जाए, वो बुद्धि क्या करती है? का वही देख लेती है, वही उसे प्राप्त कर। और अब इसको देखो क्या अग्रया बुद्धया सूक्ष्मया बुद्धया। सूक्ष्म शब्द का अर्थ समझ लोगे, अग्र शब्द का अर्थ क्या? आगे। अग्र शब्द का अर्थ क्या है? आगे। आगे का मतलब क्या? तो अग्र शब्द आया है श्रुति में अन्यत्र भी। श्रुति ही प्रमाण है क्योंकि श्रुतियों को वेदांत का। श्रुति क्या कहती? सदैव सोमिदमग्र मासी हे सोम्य सत एव आसीत। सत ही था और था ही नहीं है भी, लेकिन कब? कहा अग्र। तो अग्र क्यों शब्द प्रयोग किया? कहा सृष्टि से पहले, नाम रूप से पहले। जो ये नाम रूप है, जो ये संसार है, इस सृष्टि से पहले, इस कार्य से पहले क्या था? तो कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम। कार्य से जो निश्चित रूप से पहले जिसकी सत्ता विद्यमान है उसका नाम ही है कारण। सुराई से पहले कौन विद्यमान है? मिट्टी। तो वो मिट्टी क्या होगी? अग्र पूर्व है ना, कारण किसकी, सुराई। तो सुराई जो है ये सुराई नाम और ये आकार रूप किसमें आया, मिट्टी में। तो इससे पहले क्या था, तो कहा मिट्टी, और इसी प्रकार से यहां पर संकेत कर दिया। तो कार्य से अग्र माने सारी सृष्टि से, इस प्रपंच से पहले, इदम यह जो दृश्यमान है, दृश्य का जो रूप है, इस सारे दृश्य से पहले कौन था, कहा दृष्टा ही विद्यमान था। जिसे दृष्टा कहते हो, कहा उसी की सत्ता थी वहां, दृष्टा के अलावा दृश्य आदि की सत्ता नहीं, तब उसे दृष्टा नहीं कहते थे, लेकिन अब दृष्टा उसे कह रहे क्योंकि वो विद्यमान था और इस समय भी विद्यमान है क्योंकि इस दृश्य को भी देखने वाला वही है। तो ऐसी जो बुद्धि, इसका नाम है अग्र। तो वहां भी शब्द क्या आया, अग्र। अग्र माने सृष्टि से पूर्व, कार्य से पूर्व। तो कार्य से पूर्व जो सत्ता थी वो है कारण। तो वहां संकेत अग्र बुद्धि का क्या होगा, कारणात्मना बुद्धि। कार्य का विश्लेषण करते हुए कारण को देखने वाली जो बुद्धि है, कारण की तरफ जाने वाली जो बुद्धि है, कारण पर चोट करने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि का नाम ही क्या है, अग्र बुद्धि। और उसी को क्या कहते हैं, जो स्थूल को नहीं देख रही, किसको देख रही, सूक्ष्म, या सूक्ष्म को देख रही। तो सूक्ष्म रूप से जो स्थूलता क्या आ गई, आकार आ गया, नाम आ गया। उस आकार और नाम, उस रूप और नाम में जो है न देख करके, और नाम रूप के अंतर्गत सूक्ष्म रूप से विद्यमान जो है, छिपा हुआ जो है, उसको जो देखने वाली बुद्धि है, वो बुद्धि क्या करती, कहने लगी उसे देख लेती, उसे प्राप्त कर ले। तो ये विवेकात्मना बुद्धि या कारणात्मना बुद्धि ही है हथौड़ा। ये क्या है, तो विवेकपूर्ण बुद्धि कह दो या कारणात्मना बुद्धि, क्योंकि विवेक जब करोगे तो कार्यकारण का विश्लेषण करना, कार्य का विश्लेषण करना होगा, और कार्य के विश्लेषण करके ही आप कारण पर पहुंचते हो। तो अब जो है हथौड़ा जो है चोट लगाएगा, लेकिन केवल हथौड़े से काम नहीं चलेगा, छेन उस विवेक को पूर्ण रूप से, है ना, जो उसकी मिली हुई अवस्था है, जो उसकी संलग्नता है, जो उसकी आसक्ति है, उस आसक्ति को पृथक करने वाली कौन है, छेनी। ये छेनी क्या है, वैराग्य। क्या है, छेनी है वैराग्य। छेनी ही पृथक करेगी, उससे आसक्ति को हटा देगी, उसके रूप को अलग कर देगी और सोने को उभार देगी। तो इस प्रकार से हथौड़ा और छेनी से जैसे वहां पर उसने जो है उसको स्वर्ण की प्राप्ति करा दी, शास्त्र भी वही चर्चा करता है, उपनिषदें भी वही चर्चा करती, इसलिए उपनिषदों को भी क्या कह दिया, वेदांत। इन उपनिषदों के द्वारा उन्होंने किसकी चर्चा की है, तो उस कारण को ही बतलाने की, कार्य का जो है आरोपण आदि तो किया है, लेकिन आरोपण को फिर हटा करके कहां ले जाना है, उसी कारण, उसी में अवस्थित करना है। तो इसलिए ही यहां पर संकेत करते हैं कि कारणात्मना बुद्धि, ऐसे अभेद को प्राप्त कराने वाली बुद्धि, तो उसके लिए क्या जीवन में चाहिए, तो विवेक चाहिए, है बुद्धि, बुद्धि में रहेगा विवेक, वैराग्य भी कहां रहेगा, बुद्धि में ही रहेगा। तो विवेक चाहिए, और विवेक के साथ क्या चाहिए, वैराग्य चाहिए। ये जब दोनों आ जाते हैं तब हमारी गति होती है, और ये जब तक नहीं आते हैं तब तक जो है वॉक्स वॉक्स ही बना रहता है, तब तक सोने का साक्षात्कार। तो किसी, अब प्रमाण क्या है उसमें, तो वृद्ध प्रमाण है, वो वृद्ध जो आए उन्होंने ही तो करा, तो वृद्ध प्रमाण है, और वृद्धत्व तो क्या है, तो ये शास्त्र ही वृद्ध है, शास्त्री क्या है, वृद्ध। तो इस प्रकार से, और दूसरी तरफ से वृद्धत्व लो तो क्या, द्वे विद्ये वेदितव्य, दो प्रकार की विद्याएं का, एक विद्या क्या है, परा, और दूसरी अपरा। विद्या जो है वो क्या है, वो तो होती है नहीं होती है, ज्ञान होता है नहीं होता, और परा विद्या वो क्या है, तो उसके लिए जब कहने लगे तो अपरा विद्या का तो निरूपण कर दिया कि जो भी छत्र नक्षत्र शिल्प वेद आदि का जो ज्ञान है ये सब क्या है, का अपरा विद्या। तो इसमें क्या है, इसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी है, यहां पर क्या है, त्रिपुटी। और जो पराविद्या का वो क्यों, तो उसकी व्याख्या तो की, संकेत तो किया, लेकिन उसकी परिभाषा अपराविद्या की तो परिभाषा कर दी, लेकिन पराविद्या की परिभाषा मैंने चारों तरफ से जिसे बांध दिया जाए तो वो परिभाषित तो हो गया, और जिसको चारों तरफ से न बांध पाओ, है ना, बाड़ी से ठीक ठीक न कह पाओ, तो वो क्या हो गया, तो संकेत ही तो करना पड़ेगा, तो व्याख्या होगी, है ना। तो परिता भाषयन्ते इति परिभाषा, चारों तरफ से जिसको हु जो है बांध दिया, समझ लिया, कह दिया, तो वो तो परिभाषित हो गया। तो अपराविद्या को तो आप परिभाषित करने में समर्थ हो, लेकिन पराविद्या को परिभाषित तब क्या संकेत किया, या है अक्षर अधिगम्यते, वहां वही का संकेत किया, जिसके द्वारा अक्षर तत्व जाना जाए वही का है, का वही है पराविद्या। तो अक्षर किससे जाना जाए, तो कहने लगे अक्षर में न ज्ञाता रहता है और न ज्ञान रहता, लेकिन उससे पूर्व में जब चलते हैं तो चलने के मार्ग में तो ये रहते, लेकिन वहां पहुंचते हैं तो ये कुछ भी नहीं रहते, और उसको जानने वाला कोई दूसरा ज्ञाता नहीं होता, ठीक है ना। और ऐसे अज्ञात तत्व की प्राप्ति उससे होती है, जैसे उदाहरण के लिए एक चर्चा आई जहां पर गीता में भगवान ने अर्जुन से बार बार क्या कहा, ज्ञानम ते अहम, मैं तेरे को ज्ञान बतलाने जा रहा हूं, लेकिन कैसा ज्ञान बतलाने जा रहा हूं, केवल का नहीं, नहीं कहा कि केवल ज्ञान बतलाने, लेकिन ज्ञान के साथ जोड़ा, मैं तेरे को ज्ञान बतलाने जा रहा हूं, ज्ञान कहने जा रहा हूं, और कैसा ज्ञान कहना चाहता हूं, विज्ञान सहितम है, ज्ञानम अहम ते प्रवक्ष्यामि, तो हम तेरे को ज्ञान कहने जा रहा हूं, लेकिन कैसा ज्ञान कहने जा रहा हूं, का विज्ञान किस है, और जो विज्ञान के सहित जो ज्ञान है वही ज्ञान क्या है, समस्त असमों से मोक्ष दिलाने वाला, समस्त असमों की निवृत्ति करने वाला है, समस्त दुर्तों की दुखों की निवृत्ति करने वाला है, उसी से मोक्ष हो सकता, अन्य किसी से मोक्ष होगा, ज्ञाता ज्ञान त्रिपुटी वाले से मोक्ष नहीं, ज्ञान तो वो भी, लेकिन कैसा ज्ञान, तो कहा विज्ञान सहितम, ये विज्ञान क्या, तो विज्ञान अलग है और ज्ञान अलग है, साइंस वाला विज्ञान अलग है, लेकिन यहां जो गीता में भगवान जिसे विज्ञान शब्द से कहते हैं वो विज्ञान क्या, तब संकेत कर दिया वो विज्ञान क्या है, तो पहले संकेत किया चलेंगे तो ज्ञान से, ज्ञाता ज्ञान त्रिपुटी से ही चलेंगे, बुद्धि आदि से ही चलेंगे, लेकिन चलते चलते फिर क्या होगा, तो उसके लिए संकेत किया, जब चलेंगे तो धीरे धीरे प्रतिबंधक छूटते जाएंगे, स्टेशन छूटती जाएगी, और जब छूटती जाएगी तो कहां पहुंचेंगे, कहा जहां विज्ञान है वहां पहुंचेंगे, और विज्ञान पहुंचेंगे तो ज्ञान रहेगा कि नहीं, विचार करो, तब ज्ञान और ज्ञाता ये रहेंगे, तो इसलिए आचार्य शंकर ने बड़ी सुंदर चर्चा की, उन्होंने कहा 13वें अध्याय में भी इसकी चर्चा आई, उन्होंने संकेत किया कि विज्ञान क्या है, तो पहले उन्होंने बतलाया ज्ञान समझो ज्ञान क्या है, तो कहने लगे अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम, क्या कहा, अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम, ज्ञान क्या है, अज्ञान की निवृत्ति करने वाले का नाम है ज्ञान, और कहा विज्ञान क्या है, तो क्या कहा आगे, अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम विज्ञानम मोहय आत्मक, जान दो ज्ञान तो अज्ञान की निवृत्ति करता है, लेकिन विज्ञान क्या करता, कहा विज्ञान अज्ञान और ज्ञान दोनों को ही समाप्त कर देता, विज्ञान क्या करता, जो ज्ञान और अज्ञान दोनों को समाप्त कर दे वो है विज्ञान, और उस विज्ञान से ही असमों की निवृत्ति होती। उदाहरण के लिए लकड़ी, और लकड़ी को प्रज्वलित कर दिया तो क्या हो गया, प्रकाश अग्नि, ठीक है, तो एक तो अग्नि ये हो गई, और फिर जो है उस अग्नि ने क्या किया, प्रकाश किया, प्रकाश करके वह जो लकड़ी थी उस लकड़ी को जला दिया, तो उस अग्नि ने, उस प्रज्वलित अग्नि ने, साधनात्मक अग्नि ने, ठीक है ना, और क्या किया, उस उपाधि को नष्ट कर दिया। और उपाधि को नष्ट करके फिर क्या हुआ, फिर वो अग्नि बची क्या, कहने लगे वो भी गायब हो गई। लेकिन गायब हो गई तो क्या अग्नि नष्ट हो गई, स्वरूपतः अग्नि रह गई, ठीक है ना। उस अग्नि का जो सामान्य अग्नि है वो तो लकड़ी मात्र में प्रतीत हो रही थी, लेकिन सामान्य अग्नि कहां है, का सर्वत्र विद्यमान, सर्वत्र जो विद्यमान है व्यापक अग्नि है, और वो दृश्य है नहीं, वो किसी का दृश्य नहीं होता, इसलिए वो आत्मा जो है ऐसे दृश्य होता नहीं, और उसका नाम ही है विज्ञान। तो जहां पर ज्ञान और अज्ञान दोनों का ही समापन हो जाए उसी का नाम है विज्ञान। इसलिए पातंजल योग दर्शन के अंतर्गत चित्तवृत्ति निरोधा इत्यादि कहके योग की चर्चा आदि की, और उसके अंग बतला दिए, और समाधि आदि की चर्चा की, तो आठ अंग बतलाए। भगवत पादाचार्य आचार्य शंकर ने 20 की चर्चा की, और कहा कि तो छोटा सा ग्रंथ आपका है अपरोक्षा अनुभूति। उस अपरोक्षा अनुभूति के अंतर्गत उन्होंने जो है उस योग को बतलाया, क्योंकि ग्रंथ ही का नाम अप्रोच, वहां प्रत्यक्ष आदि ज्ञान की बात नहीं, लेकिन अप्रोच की बात है। अब जहां अप्रोच ज्ञान की बात है तो वहां उन्होंने योग का निरूपण किया, और योग का निरूपण किया, आठ अंग जो इन्होंने बतलाए इनको भी स्वीकार कर लिया, लेकिन सात और स्वीकार किए, देश काल दृक स्थिति है साम्य, ये सब जो है मौन त्याग ये और जोड़ करके 15 अंग उन्होंने उस योग के स्वीकार किए, और 15 योग स्वीकार करते हुए फिर अंत में कहां पहुंचाए, तो कहने लगे जैसे इन्होंने कहा कि चित्तवृत्ति निरोधा, उन्होंने भी कहा निराकारतया वृत्तया है, का वृत्तियों को सब हटा दिया तो क्या रह गया, शून्य रह गया, का नहीं अब क्या करना है, ब्रह्माकारतया पुनः, अब कैसी वृत्ति बनाओ, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन ये भी तो एक वृत्ति है, ये भी तो एक ज्ञान है, तो कहने लगे वृत्ति विस्मरण सम्यक, अब कहने लगे इस वृत्ति को भी, और ये वृत्ति भी जब गई तब क्या रह गया, अब उसी का नाम उन्होंने कह दिया समाधिर ज्ञान संज्ञिका। वो समाधि कैसी है, ज्ञान संज्ञिक समाधि, उसमें व्युत्थान नहीं होता, वो है निर्विकल्पक समाधि, और जहां पर जो है योगी की है तो समाधि में उत्थान होता है, और फिर संस्कार आ जाएंगे, फिर वही झंझट होगा, इसलिए वहां पर जो है इस प्रकार की चर्चा उन्होंने भी कर दी। तो इससे सिद्ध होता है कि वेदांत क्या है, और ऐसे इस वेदांत को बतलाने वाली कौन है, उपनिषदें, और उन उपनिषदों को भी है? उनके पद का उनके वाक्य का रहस्य बतलाने वाले कौन है, ऋषि। इसलिए मंगलाचरण में कहा कि ये अयेई इवेह गुरुभी पूर्वम पद वाक्य प्रमाणतः, पद को लेकर के वाक्य को लेकर के और उनमें प्रमाण करते हुए प्रमाण स्वरूप ऋषि उन्होंने ही प्रमाण दिए, और कहने लगे ऐसे जिन गुरुओं ने उन श्रुतियों के रहस्यों को बतलाते हुए और जिसकी व्याख्या की है, ऐसे उन गुरुओं को किसके लिए व्याख्या की, का वेदांत के लिए, वेदांत का निरूपण किया, तो ऐसे उन ऋषियों को मैं नमस्कार करता हूं। ये श्लोक का अर्थ किया गया। तो अब जो है इस प्रकार से हम क्रम से देखें, इसलिए चर्चा की थी कि कार्य से हम कारण की तरफ जाएं, उपनिषदों का संकेत क्या है, कार्य से कारण की तरफ जाओ, कारण को लक्ष्य बनाओ, जब कारण को लक्ष्य बनाओगे तो अब आप विचार कर लो, हमने जो है चतुष्टय पुरुषार्थों की चर्चा कर दी है, चार अवस्थाओं की चर्चा कर दी, चार आश्रमों की चर्चा कर दी, ये सारी चर्चाएं जो हमको प्राप्त हैं, लेकिन इन चर्चाओं का अभिप्राय क्या, इन चर्चाओं का भी अभिप्राय है कि इनके माध्यम से क्रम से हम कहां जाएं, कारण की तरफ जाएं, ये हमें कारण की तरफ ले जाने में सहयोगी, हमारी अवस्थाएं भी और हमारे आश्रम भी, और इसी प्रकार से हमारे जो है अवस्था इत्यादि ये सब जो है जिनको चार चार भाग करके कह दिया, तो तीन की तो प्रस्फुटता है और एक अप्रस्फुट है। तीन की तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति प्रस्फुट व्यक्त जिसे कह दो, और जिसको अब चतुर्थ कहते हैं और तुरी कहते हैं वो अव्यक्त। लेकिन वही क्या है, तो तुर धातु ही है पूर्ण अर्थक, वो कोई चौथी अवस्था है ऐसा नहीं, किंतु उसे संकेत किया गया समझाने के लिए। लेकिन वो क्या है, इन तीनों का अधिष्ठान कह दो, इन तीनों का आधार कह दो, आश्रय कह दो, और तीनों का विषय भी वही। उसके बगैर न जागृत हो सकती है, उसके बगैर न स्वप्न हो सकती है, उसके बगैर न सुसुप्ति, लेकिन इनके बगैर वह है। ये अन्वय व्यतिरेक जो शास्त्र में बतलाया जाता, इनके बगैर भी वो है। जिस समय जागृत नहीं है तो वो है कि नहीं, जीव है कि नहीं, जीव को भी पकड़ लो पहले, और स्वप्न भी नहीं जागृत भी नहीं तो जीव है कि नहीं, तो है, खास सुसुप्ति है, लेकिन सुसुप्ति भी तो नहीं होती तो भी जीव रहता। अब जो ये जीव है वो जीव क्या है, तो जहां पर जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों नहीं रह जाती है ना, उससे आगे जो स्थिति है, लेकिन वहां जाना बनता, वहां हमें डर लगता। सारे व्यक्ति भयभीत होते वहां पहुंचने के लिए, इनको छोड़ने के लिए भयभीत होते, और जो इनको छोड़ने में भयभीत नहीं होता, अभय को प्राप्त कर लेता है, वही दैवी संपद से युक्त होकर के और उस तत्व को प्राप्त हो जाता। अब पुराणों में आप एक कथा सुनते हो, भागवत में एक चर्चा आई है, आपने सुना है कि मणि समंतक मणि, और किसके पास थी, सत्राजित के पास। उस मणि का स्वभाव क्या था और प्रभाव क्या था, कई भार सोना वो मणि देती थी है ना। अच्छा, उसको भगवान ने सत्राजित से क्या कहा कि ये मणि तुम हमको, लेकिन सत्राजित ने नहीं दी है ना। तो ये मणि क्या है, अब समय ज्यादा हो जाएगा, तो वैसे ये मणि है, आत्मा ही है मणि, आत्मा ही क्या है मणि। अब जो है आत्म मणि से ही जो भार मिलता है उसी से राज्य व्यवस्था चलती, तो सारे शरीर की जो है उसी की चेतना से, उस मणि के ही चेतनत्व से, यह सारे की सारी जो हमारी जीव की स्थिति है या शरीर की तीनों अवस्थाओं की स्थिति है, वो जो है क्या है, व्यवस्थित होती है। उसके बगैर वो व्यवस्थित हो सकती नहीं, और उसी को देकर के सुशोभित होती, और उसने जब नहीं दिया तो फिर भगवान तो शांत हो गए। भगवान इस पर जो है ऐसा नहीं जैसे आजकल हम लोग, जो नहीं देता है तो जबरदस्ती ले लो, ये वो नहीं, भगवान शांत हो गए। और भगवान कहते भी हैं, क्या कहते हैं, मई एव मन आधत्स्व मई बुद्धिम, ये सब चर्चा कहते, और यदि इस प्रकार से क्रम से चलेगा तो क्या है, मई एव निविशिष्यसि अत ऊर्ध्वम न संशय, ये सब चर्चा। तो इन सब बातों का अभिप्राय क्या, इस समय ज्यादा हो जाए, कल इसकी चर्चा करेंगे। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति का अतिक्रमण कैसे, इस मणि के अंतर्गत वहां उपाख्यान देकर के और भगवान ने समझाया, वेदांत का सारा सार वहां ला करके रख दिया। क्या वेदांत है ये उसके अंतर्गत बतलाया, इसकी चर्चा हम कल कर देंगे।